જયધવલા પુસ્તક 12 લેક્ચર નંબર 6 ઓમ નમઃ સિદ્ધેય ઓમ નમઃ સિદ્ધેય ઓમ નમઃ સિદ્ધેય ઓમ સુતાત્મને નમો અરિહંતાણ નમો સિદ્ધાણ નમો આયરિયાણ નમો વજ્રાયાણ નમો લોયે સવસાઉં જે તે કેવલ દંતણ નાણુ અજોગે જુગવધુ અજુતા કેવલિનો પણમિય ઓચ્છમ ઉવજોગમણિયોગમ. યહ શ્રી વીરસેન આચાર્ય રચિત જયધોલા ટીકા હૈ જો કશાય પૌર તથા શૂન્ય સૂત્ર ગ્રંથો પર લિખી હુઈ હૈ જિનકે કરતા હૈ ગુરુધર ભટ્ટારક તથા યતિ ઋષભ આચાર્ય જિન્હોને ભગવાન મહાવીર કે ઉપદેશ કે અનુસાર ઇન ગ્રંથો કી રચના કી હૈ. 12વીં પુસ્તક જો ઉપયોગ નામ કા અર્થાધિકાર હૈ उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 67 पर आ गए. 67. अब यहाँ जो चौथी गाथा की अर्थ विभाषा शुरू है वहाँ तो पूछा गया था कि एक कषाय संबंधी एक अनुभाग में एक काल में कौन सी गति उपयुक्त तो होती है तथा कौन सी गति विसदृश रूप से उपयुक्त तो होती है. इसका यहाँ जो पूछा है उसी की बात यहाँ चल रही है. तो इसमें दो उपदेश पाए जाते हैं. एक उपदेश के अनुसार जो कषाय है वही अनुभाग है, ये उन्होंने मूल सूत्र में ही बताया था. यानी उसको कहते अप्रवाह्यमान उपदेश. कषाय को ही अनुभाग कहा और उसको अप्रवाह्यमान उपदेश कह दिया था. तो उसका अर्थ या उसका अभिप्राय है कि अनुभाग कषाय से जुदा नहीं है. फिर उस पर पूछा गया था कि अनुभाग कारण है और कषाय परिणाम है, उसका कार्य है. तो इस प्रकार इसमें भेद है तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है. तो कार्य में कारण का उपचार करके उन दोनों में अपृथक्पना स्वीकार किया गया. तो ऐसा भी कषाय है वही अनुभाग है ये समझ कर अभी आगे की बात करते हैं. क्रोधो क्रोधानुभागो, क्रोध कषाय ही क्रोधानुभाग है. पहले बताया ना कषाय है वही अनुभाग है, तो क्रोध कषाय ही क्रोध अनुभाग है. क्रोध कषाय ही क्रोधानुभाग है, अन्य कुछ नहीं. यह इस सूत्र का अर्थ है. एवं मान माया लोभानम, इसी प्रकार लोभ मान और माया कषाय की अपेक्षा कहना चाहिए. क्रम उल्टा दिया वहाँ, मान माया लोभानम लिखा है. मान माया और लोभ की अपेक्षा कहना चाहिए. जिस प्रकार क्रोध कषाय ही क्रोधानुभाग है इस प्रकार समर्थन किया है, इसी प्रकार मान कषाय ही मानानुभाग है, माया कषाय ही मायानुभाग है और लोभ कषाय ही लोभानुभाग है, ऐसा कहना चाहिए. क्योंकि यहाँ पर कार्य और कारण में अभेद का उपचार किया गया. तदो काच गदी एक समयेन एक कषायोग जुत्ता वा दु कषायोग जुत्ता वा सी कषायोग जुत्ता वा चतु कषायोग जुत्ता वा सी एदम पुच्छा सुक्तम. यानी सूत्र में क्या पूछा गया है यही बात फिर दोहराते हैं कि इसलिए कौन गति एक समय में एक कषाय में उपयुक्त है, दो कषायों में उपयुक्त है, तीन कषायों में उपयुक्त है अथवा चारों कषायों में उपयुक्त है, इस प्रकार यह पृच्छा सूत्र है. कौन सी गति उपयुक्त है, सभी जीव किसी एक कषाय में ही उपयुक्त है क्या नहीं है, कि दो में है कि तीन में है कि चारों में, किसी एक समय में क्या सभी के सभी जीव एक विशिष्ट कषाय रूप से परिणत है. यतः सभी जीवन की अपेक्षा विशिष्ट गति की बात करें, जैसे पूरे नरक गति क्या क्रोध रूप परिणमित हो रही है, ये बात पूछ रहे हैं। यतः कषाय ही अनुभाग है, इसका उक्त प्रकार से समर्थन किया है। अतः एकम मिदु अनुभागे इत्यादि पृच्छा सूत्र का इस प्रकार अनुगम करना चाहिए, यानी कषाय को ही अनुभाग करके फिर उसका अर्थ भी बता रहे हैं। यथा नरकादि गतियों में से कौन सी गति एक समय में एक कषाय में उपयुक्त है, ये यहाँ कहने का प्रयोजन था। यह प्रथम पृच्छा है, क्योंकि एक कषाय संबंधी एक अनुभाग में एक काल में कौन सी गति उपयुक्त है, इस प्रकार इस सूत्रवचन से यह अर्थ निबद्ध देखा जाता है। अब विसरिषम उवजुज्यते काच, इस प्रकार गाथा सूत्र के इस अंश का आश्रय कर दो कषायों में उपयुक्त, तीन कषायों में उपयुक्त अथवा चार कषायों में उपयुक्त कौन कौन सी गति होती है, इस प्रकार इन तीन पुच्छा निर्देशों का अनुगम करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर गाथा में आए हुए विसदृश उपयोग, यानी अन्य अन्य जीवों के अन्य अन्य उपयोग है, अन्य अन्य कषायों में वो उपयुक्त है। पद का अर्थ एक कषाय के उपयोग से विपर्यास अर्थात भिन्न प्रकार के लक्षण वाला उपयोग ग्रहण किया गया है। इस प्रकार की पेज नंबर 68, इस प्रकार की पृच्छा से संबंध रखने वाले अर्थ का कथन करने के लिए यह गाथा सूत्र आया है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए यह पृच्छा सूत्र है, इस प्रकार कहा है। अब इस प्रकार की पृच्छाओं का निर्णय करने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध कहते हैं। तदो निदर्शनम, निदर्शनम पहले आया ना, वहां कुछ अलग शब्द आया था ना, निर्णय के लिए एक शब्द आया था। निर्णय करना ऐसा कुछ वहां शब्द आया था, तीन शब्द उन्होंने दिए थे। उपसंदर्शन 51 पेज पर, उपसंदर्शन यहाँ निदर्शनम, निदर्शनम वहाँ उपसंदर्शनम, निदर्शनम वहाँ उपसंदर्शनम। अच्छा ठीक, अब आगे निर्णय करते हैं। तदो अर्थात पृच्छाओं के अनुगम के अनंतर अब इनका निदर्शनम अर्थात निर्णय करके बतलावेंगे, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। तम जहा वह कैसे, निरय देव गदीनम एदे वियप्पा थी शेषाव गदियो नियमा चदुकसायो जुक्ता हो, नरक गति और देव गति में ये विकल्प होते हैं, शेष गतियां नियम से चारों कषायों में उपयुक्त होती है। शेष गतियां यानी मनुष्य और तिर्यंत तो चारों गतियों में उपयुक्त होती है, इसका अर्थ उन गति वाले जीवों में लोग तो है ना, कुछ जीव क्रोध रूप, कुछ मान रूप, कोई माया रूप, कोई लोभ रूप है, चारों कषायों में उपयुक्त होते। अब नरक गति और देव गति में ये विकल्प होते, कौन से विकल्प, किसी एक कषाय में,
एक कषाय में, दो कषाय में उपयुक्त
होते, ये अनंतर पूर्व कहे गए पृच्छा विकल्प और उनके उत्तर स्वरूप कहे गए विकल्प नरक गति और देव गति में है। क्योंकि नरक गति में तो क्रोध कषाय में उपयुक्त हुई जीव राशि काल के महात्म्य के कारण सबसे अधिक होकर निरंतर राशिपने का अनुभव करती है, यानी क्रोध कषाय तो हमेशा ही पाया ही जाएगा, मैक्सिमम मैंने हमेशा रहेगा ही रहेगा, यानी क्रोध दशा में कोई जीव नहीं ऐसा कभी नहीं बनेगा। वहाँ क्या चलती है, क्रोधमान 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 हजारों बार हो जाता है, तब जाके एक बार मान को लांघकर माया रूप हो जाता है, यानी क्रोध होकर माया हो जाते है। और देव में उल्टा लेना,
लोभ करते
हैं, हाँ, वहाँ लोभ को लेना। इसी प्रकार देवगति में भी लोभ कषाय में उपयुक्त हुई जीव राशि को निरंतर जानना चाहिए, यानी हमेशा कोई ना कोई जीव लोभ कषाय में होगे ही होगे। इसलिए क्रम से ये दोनों राशियां नरक गति और देवगति में निरंतर राशि होने से एक कषाय में उपयुक्त हुए जीवों को ध्रुव करके, यानी ध्रुव रूप तो एक कषाय है ही है, शेष कषायों के साथ दो संयोगी, तीन संयोगी और चार संयोगी भंग कहना चाहिए। यानी एक कषाय में उपयुक्त भी है, दो कषाय में भी है, तीन कषाय में भी है, चार में भी है। इस कारण से नरक गति और देव गति एक कषाय उपयुक्त, दो कषाय उपयुक्त, तीन कषाय उपयुक्त अथवा चार कषाय उपयुक्त होती है, यह सिद्ध हुआ।
तो नरक गति में खाली क्रोध पूर्वक ही सभी जीव क्रोध से परिणमित हो सकते हैं,
ऐसा हो सकता है। कोई किसी समय में सभी नारकी जितने हैं सभी क्रोध रूप परिणमित हो रहे बन सकता है,
तो देव में लोग रूप।
और कभी ऐसा होगा कि
क्रोध और मान
कुछ जीव तो यानी देव में लेना है तो लोभ और माया, और यहाँ दो कषाय में क्रोध है मान में, तीन महीने माया को भी ले लेना, चार महीने लोभ को भी ले लेना। शेष गतियां नियम से ऐसा कहने पर तिर्यंच गति और मनुष्य गति नियम से चार कषायों में उपयुक्त होती है। वहां क्रम क्या है, प्रेरणा बिन तिर्यंच और मनुष्यों में कषायों का जो हर समय तो अवस्थित उस परिपाटी कही थी, अभी कोई भी कॉम्बिनेशन बताओ ना, हाँ, लोभ माया मान क्रोध, लोमा माक्रो, देखो ना ये निकल, ये परिपाटी की बात आई थी ना, पेज नंबर, हाँ, 30 के आगे ही बात है, लोभ माया क्रोध मान, लोभ माया क्रोध मान, लोमा क्रोमा है, हाँ अच्छा है, लोभ माया क्रोध मान 29 पेज पर है। ये चारों कषायों में ध्रुव रूप से पाए थे। इस प्रकार पेज नंबर 69 उक्त चूर्णी सूत्र की व्याख्या करके अब नरक गति और देव गति में चारों ही विकल्पों के संभव होने पर वहां किस कषाय के साथ कौन विकल्प बनता है, इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उपरिम प्रबंध का उपदेश करते हैं। यानी एक कषाय तो होगी तो कौन सी होगी, दो होगी तो कौन सी होगी, नियम बता रहे इसका। निरय गई जह एको कषायो नियमा को हो, नरक गति में यदि एक कषाय है तो नियम से क्रोध कषाय होती है, क्योंकि क्रोध कषाय के उपयोग काल का वहां सबसे अधिक उपदेश होने के कारण समस्त नारक राशि का क्रोध कषाय में अवस्थान होने में कोई विरोध नहीं पाया जाता, पर इससे शेष कषायों के उपयोग कालों में भी उस प्रकार से संभव होने की आशंका नहीं करनी चाहिए। यानी सब में तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त ही रहेगा, तो रहेगा ही, तो कहते हैं कि अन्य कषाय में भी ये पॉसिबल हो सकता है कि सभी के सभी नारकी मान रूप हो जाए या माया रूप हो जाए या लोभ रूप, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस प्रकार का संभव पूर्व में कहे गए अल्प बहुत्व सूत्र से बाधित हो जाता है। अल्प बहुत्व में हमने देखे थे ना, 8-8 अल्प बहुत्व देखे थे, यानी किसमें कितने उपयोग होते हैं उसकी बात हमने देखी थी वहां पे। और कहते यदि दुख संयोग कोहे न स अन्नदरो दुसंजोग, कोई एक अन्यतर यदि दो कषायों का संयोग है तो क्रोध के साथ अन्यतर एक कषाय, इस प्रकार दो कषायों का संयोग होता है। अन्यतर यानी उसमें से तीन में से कोई भी है, क्योंकि हमने मान हमने क्या देखा था, क्रोधमान 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 होता रहता है, हजार होने पर क्रोध और माया हो जाता है मान को लांग कर, और जब लोभ होना है तो मान माया को लांग कर लोभ हो जाता है, इसलिए यहाँ अन्यतर कषाय लिया। दो कषायों के समाहार से उत्पन्न हुआ उपयोग, दो कषाय ऐसा कहा जाता है, वह कैसे उत्पन्न होता है, ऐसी पृच्छा होने पर कोहेन सह अन्नदरो दुसंजोगो, यह निर्देश किया है। क्रोध वो घ दिख रहा है कि ध है, क्रोध राशि को ध्रुव कर, यानी क्रोध वाले तो जीव हमेशा पाए जाएंगे ही जाएंगे, कुछ मान रूप भी हो गए ना इस समय, तो क्रोध राशि को ध्रुव कर उसके साथ मानादिक में से अन्यतर कषाय को, यानी कभी ऐसा हो गया कि बहुत सारे क्रोध रूप है और कुछ एक या अनेक जीव मान रूप है, कभी ऐसा होगा बहुत सारे क्रोध रूप से है और एक या अनेक जीव माया रूप से है, लोभ में भी ऐसे लगाना। तो कहते क्रोध राशि को ध्रुव कर उसके साथ मानादिक में से अन्यतर कषाय को ग्रहण कर दो का संयोग करने पर द्विसंयोगी भंग उत्पन्न होता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। शंका, वह कैसे, उसका समाधान, क्रोध और मान में उपयुक्त हुए जीव अथवा क्रोध और माया में उपयुक्त हुए जीव अथवा क्रोध और लोभ में हुए उपयुक्त हुए जीव, इस प्रकार ये तीन द्विसंयोगी भंग होते हैं। द्विसंयोगी भंग कितने हैं तो तीन, क्रोध को ध्रुव रखा उसके साथ एक बार मान को लिया, एक बार माया को लिया, एक बार लोभ को लिया। अब तीन कषायों में उपयुक्त हुए जीवों के विकल्पों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अभी तीन संयोगी में ले लेना, उसमें कॉम्बिनेशन लगा लेना। यदि ती कषायो कोहे न सह अन्न दरो ती संयोगो, यदि तीन कषायों का संयोग है तो क्रोध के साथ अन्यतर दो कषाय, इस प्रकार तीन कषायों का संयोग होता है। तीन कषायों का संयोग तीन कषाय ऐसा कहा जाता है, वह कैसे उत्पन्न होता है, ऐसी पृच्छा होने पर क्रोध के साथ शेष कषायों में से अन्यतर दो कषायों को ग्रहण कर तीन का संयोग करने पर उत्पन्न होता है, ऐसा कहा है। शंकाकार पूछता है वह कैसे, अब ये कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसको बता रहे। समाधान, क्रोध मान और माया में उपयुक्त हुए जीव अथवा क्रोध मान और लोभ युक्त हुए जीव अथवा क्रोध माया और लोभ में उपयुक्त हुए जीव, इस प्रकार यहाँ पर भी तीन ही भंग होते हैं। ऊपर भी हमने उतने ही देखे थे। हाँ, क्योंकि तीन ही भंग होते हैं, उसमें अक्षरों में बताया और फिर अंकों में बताया, संदृष्टि उसकी तीन बता दी, तीन ही होते हैं। अब चार कषायों के कथन करने के लिए कहते हैं, अभी वो चेक पर लिखते हैं ना, पहले अंकों में लिखते फिर अक्षरों में लिखते। यहाँ भी हमारे ख्याल में आए थे वो तीन लिख दिया उन्होंने। यदि तीन भंग तीन होते हैं, तीन संयोगी भंग, अच्छा अच्छा यहाँ तीन भी लिखा और फिर तीन, यदि चौ कसायो सौवे चैव कसाया, ये मूल में प्राकृत में लिखा है ना, एवं एच्छवी तिन्नी चैव भंगा, उसके बाद तीन लिखा है, तीन ही भंग होते हैं, फिर वहां पर तीन लिखना चाहिए था। ऊपर भी ऐसा लिखा, कोह लोभो जित्ता वाक्ति एवं मेरे चिन्नी दू संयोग भंगा। इस प्रकार तीन द्विसंयोगी भंग होते हैं, उसके बाद तीन लिखना चाहिए। ऊपर के अनुसार अगर लिखना है तो वाक्य के लास्ट में उन्होंने वहां पर भी वो बराबर नहीं है, तीन द्विसंयोगी भंग तीन होते हैं, यानी तीन द्विसंयोगी भंग होते हैं। अपन पहले तीन शब्द आ गया था ना वहाँ, हाँ तो तीन शब्द वाक्य के अंत में रखना है संदृष्टि के रूप में। यहाँ भी वो अंत में ही रखना है, होते हैं के बाद वो तीन आंकड़ा चाहिए। अब आगे का सूत्र, यदि चौ कसायो सौवे चैव कसाया, यदि चार कषायों का संयोग है तो सभी कषायें होती है, क्योंकि चार ही है ना कषाय, क्रोधमान माया लोग। यह सूत्र सुगम है क्योंकि सभी क्रोधादि कषायों को ग्रहण कर चार कषायों में उपयुक्त रूप विकल्प की उत्पत्ति में विसंवाद नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर एक ही भंग होता है, इस प्रकार ओघ से नरक गति में कथन किया। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों में कथन करना चाहिए, क्योंकि विवक्षित ओघ प्ररूपणा से उसमें कोई भेद नहीं है। विवक्षित ओघ प्ररूपणा का अर्थ क्या है?
ये जो सामान्य नाति में बताया, हाँ, वही
नरक गति में जो जनरल बताया उसको विवक्षित ओघ कहा है। तो आदेश मार्गणा की बात, फिर भी सामान्य रूप सभी नारकियों में बताया तो विशेष रूप प्रत्येक पृथ्वी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। यानी कहा ना ओग से नरक गति में कथन किया, ओग से यानी सामान्य से। अब देव गति में भी लोभ से आरंभ कर पश्चातानुपूर्वी से यही प्ररूपणा कहनी चाहिए, इस बात का कथन करने के लिए यह सूत्र कहते हैं। यानी वहाँ सभी लोभ रूप एक ही कषाय रूप हो गए तो सभी लोभ रूप हो गए देव। जहाँ निरे गदीय कोहे न तहा देव गदीय लोभे न कायोगा, जिस प्रकार नरक गति में क्रोध के साथ कथन किया है उसी प्रकार देव गति में लोभ के साथ कथन करना चाहिए। जिस प्रकार नरक गति मार्गणा में ध्रुवपने को प्राप्त हुए क्रोध के साथ शेष कषायों का आश्रय कर एक दो तीन और चार कषाय में उपयुक्त हुए जीवों के विकल्पों का कथन किया है, उसी प्रकार देव गति में भी लोभ के साथ प्रकृत प्ररूपणा निस्संशय रूप से जान लेनी चाहिए। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यानी एक कषाय में उपयुक्त हो गए तो सभी लोभ में हो गए, दो में हो गए तो
लोभ और मान, लोभ और माया,
लोभ माया या लोभ मान या लोभ क्रोध, तीन हो गए तो
लोभ माया,
लोभ माया मान या लोभ माया क्रोध या लोभ मान क्रोध, ये तीन हो गए।
तो चार का तीन,
द्विसंयोगी भी तीन और तीन संयोगी भी तीन, चार का तो एक ही हुआ। इस प्रकार सर्वप्रथम अप्रवाह्यमान उपदेश के अनुसार, अप्रवाह्यमान उपदेश क्या था प्रेरणा दे? कषाही अनुभाग, अनुभाग की बात है ना, तो कषाही अनुभाग है। इस वैसे दोनों में अभेद करके ये अप्रवाह्यमान उपदेश किया। अप्रवाह्यमान उपदेश के अनुसार गाथा सूत्र के अर्थ का एक प्रकार से व्याख्यान करके अब प्रकृत अर्थ का उपसंहार वाक्य कहते हैं। यानी ये उपदेश अभी यहाँ लास्ट करेंगे, फिर दूसरा उपदेश बताएंगे। इक्के न उपदेश न चौथी गाहाय विहासा समत्ता भवदी, एक उपदेश के अनुसार चौथी गाथा की व्याख्या समाप्त होती है। यह उपसंहार वाक्य सुगम है। अब दूसरे उपदेश का आश्रय कर गाथा सूत्र के अर्थ का विशेष व्याख्यान करते हुए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। इन्हें अब दूसरे उपदेश के अनुसार बताएंगे। यहाँ पर चौथी गाथा के दो उपदेश से बताइए। पवाई जनते न हुए से न चौथे गहाय विहासा। यार उन्होंने स्पष्ट बता दिया है, वहां तो एक उपदेश के अनुसार इतना ही बताया था और उसका अर्थ भीमसेन स्वामी ने खोलकर बताया कि यहाँ अप्रवाह्यमान उपदेश है। यह मूल सूत्र में बताया है पवाई जनते न हुए से न चौथी गाथा है व्यास के प्रवाह्यमान उपदेश के अनुसार चौथी गाथा का विशेष व्याख्यान करते हैं। आगे प्रवाह्यमान उपदेश का आलंबन लेकर इस चौथी सूत्र गाथा के अर्थ का विशेष व्याख्यान करते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। शंका, प्रवाह्यमान उपदेश किसे कहते हैं, पूछी गया उन्होंने। पहले तो बात आई थी यहाँ पर। समाधान, यह कहा है कि जो सब आचार उनके द्वारा सम्मत है, चिरकाल से बहुत लंबे काल से अत्रुटित संप्रदाय क्रम से चला रहा है। अत्रुटित संप्रदाय क्रम, अत्रुटित यानी बीच में खंड नहीं हुआ है, मूल धारा सर्वज्ञ से जो चली आ रही है, संप्रदाय यानी भगवान सर्वज्ञ के द्वारा जो उपदेश चला रहा है और जो शिष्य परंपरा के द्वारा प्रवाहित किया जाता है। कौन सी तीन बातें बताई? सब आचार्यों के द्वारा सम्मत है, चिरकाल से अत्रुटित संप्रदाय क्रम से चला रहा है, और तीसरी बात जो शिष्य परंपरा के द्वारा प्रवाहित किया जाता है, प्रज्ञापित किया जाता है, वह प्रवाह्यमान उपदेश कहा जाता है। कि शिष्यों के द्वारा परंपरा चलेगी तभी प्रवाह रूप से चलेगा। अथवा आर्यमंक्षु भगवान का उपदेश प्रकृत में अप्रवाह्यमान उपदेश है, यानी यहाँ की बात है। आर्यमंक्षु ये मुनि का नाम है, आचार्य हुए थे। अथवा नागहस्ति क्षमाश्रमण श्रमण का, नागहस्ति क्षमा श्रमण, श्रमण यानी मुनिराज, उनका नाम नागहस्ति क्षमा, उनका उपदेश प्रवाह्यमान उपदेश है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना है। हाँ, सुरमी सूत्रकार ने इन दोनों से सीखा, गुरु परंपरा इनसे उनके पास आती। ये पहले जब हमने वो कहाँ से ओरिजिनेटेड है वो देखा था, धवला जय धवला के शुरू में, तभी इनकी चर्चा आई थी।
आर्यवंश को भगवान क्या?
कुनकुंदाचार्य को भी कहते हैं, पद्म प्रभमलधारी भगवान भी कहते हैं। मुनिराज को भगवान कहने की पद्धति है। हाँ, भगवान लक्ष्मी भगवान उनको भी कहते हैं, मुनिराज को भगवान भी कहने की पद्धति है। भगवान कुनकुंदाचार्य ऐसा कहते बहुत ज्यादा। तो पहले अनुभाग किसको कहा था? कि कषाय को ही अनुभाग कहा था। अब यहाँ दूसरी पद्धति से इसका अर्थ बता रहे हैं। एकम मिदु अनुभागेति जम कषाय उदयस्थानम सो अनुभागो नामा। एक अनुभाग में जहाँ पर जो कषाय उदय स्थान है उसके अनुभाग संज्ञा है। यहाँ कषाय के उदय स्थान को अनुभाग कहा, किस रूप में उसका उदय चल रहा है, उनके दिन अनुभाग कितना है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। इसका यह तात्पर्य कि पिछली प्ररूपणा में जो कषाय है वही अनुभाग है, ऐसी विवक्षा की थी, क्योंकि वहां कार्य और कारण में अभेद नय का आलंबन लिया गया था। ये नय से बात करने में ये उपदेश झूठा ऐसी बात नहीं, दोनों को ही ग्रहण करने योग्य है। विशिष्ट नय के आलंबन से वो कथन है, इसको जानना आवश्यक है। क्या कहते, वहां कार्य और कारण में अभेद नय का अवलंबन लिया गया था और कार्य में कारण का उपचार किया गया, दोनों को अभेद करके कार्य में कारण का उपचार। क्या कारण हुआ? कषाय रूप परिणाम। और कारण क्या था?
क्रोध रूप,
क्रोध का उदय, तो कार्य में कारण का उपचार किया गया था। परंतु यहाँ पर अभी यहाँ क्या बात है, कषाय अन्य है और अनुभाग अन्य है, यह विवक्षा की गई। क्योंकि यहाँ कार्य और कारण में भेद विवक्षा का अवलंबन लिया गया।
अनुभाग तो कषाय का ही होता है।
हाँ, होने दो। और कार्य ही कारण नहीं होता, क्योंकि इन दोनों के एक होने का निषेध है। इसलिए इस प्रकार के अभिप्राय से यह प्ररूपणा प्रवृत्ति हुई है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। अब सूत्र के अर्थ का विवरण करते हैं, अभी इसका तो विवरण करेंगे। एकम मिदु अनुभागे इस वचन द्वारा गाथा सूत्र के अंश के शब्दार्थ का परामर्श करके तदनुसार जो कषाय उदय स्थान है वह अनुभाग है, इस प्रकार उसका अर्थ निर्देश किया। कषाय ही अनुभाग नहीं है, किंतु असंख्यात लोक प्रमाण भेदों को लिए हुए जो कषाय उदय स्थान है वह यहाँ पर अनुभाग है, इसी विवक्षा की है। यह इस सूत्र का भावार्थ है। एक कालेनेति कषायोजोगद्धट्ठानेति भणिदं होदि। एक कालेने इस पद का अर्थ कषायोपयोगाद्धास्थान ऐसा कहा गया है। एक काल में ऐसा पता है ना, एक कालेन कषाय उपयोग अध्यास्थान, ये अध्यास्थान आए थे ना, अभी हमने देखा था ना, स्थान जघन्य से उत्कृष्ट था, कितने काल तक उस विशिष्ट कषाय में उपयुक्त है उसको काल अध्या कहा था, अध्यास्थान कहा था। ये वर्गणा की बात की थी, उपयोग वर्गणा, कालोपयोग वर्गणा और भावोपयोग वर्गणा, तीसरी गाथा में ऐसी बात। एक कालेन इस पद में आया हुआ काल शब्द समवाय वाचक है, कषायोप उपयोग अध्यास्थान। ऐसी पिछली प्ररूपणा में कह आए हैं, परंतु यहाँ पर उस प्रकार ग्रहण नहीं करना चाहिए। वो हमने जो याद किया ना पिछली प्ररूपणा ने, पहले जो हमने कालोपयोग वर्गणा वगैरह देखी थी वो अलग स्थान है, यहाँ एक काले न, यहाँ पर उस प्रकार ग्रहण नहीं करना, किंतु यह काल शब्द कालोपयोग वर्गणाओं का वाचक, वही तो बात है ना। यानी कितने समय तक हमने 25 से लेकर 100 तक देखे थे कालोपयोग वर्गणा, इसलिए एक कालेन ऐसा कहने पर उसका अर्थ एक कषायोपयोगाद्धास्थान होता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यानी वो तो कषाय के उदय स्थान जो है और कषाय के अध्या स्थान है उसमें कुछ बातें बताएंगे, अभी उन्होंने तो अभी शुरू किया है बताना। तो क्या कहते हैं, एक कालेन का अर्थ क्या किया उन्होंने, कालोपयोग वर्गणाओं का वाचक है, ऐसा सन्ना यह संज्ञा है, अनंतर पूर्व कही गई यह संज्ञा प्रवाह्यमान उपदेश के अनुसार जानना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। देखो ये गाथा का अर्थ कर रहे हैं, गाथा निकालो फिर से। चौथी गाथा की बात 65 वहाँ से शुरुआत हुई। नहीं गाथा नहीं, गाथा मूल गाथा मत निकालो, गाथा संबंधी सूत्र 65 पेज पर अंतिम लाइन, वहाँ क्या पूछा था, एक कषाय संबंधी एक अनुभाग में एक काल में। एक काल का अर्थ क्या कहा अभी, वहां पर अप्रवाह्यमान उपदेश में क्या दिखा था, एक काल में नहीं किसी एक समय में, वह मात्र काल लिया, और यहाँ उसका एक काल में का अर्थ क्या करना है, कालोपयोग वर्गणा में लेना, काल संबंधी स्थान देखना, एक काल में का अर्थ। काल में ही नहीं बस,
थोड़ा डिफिकल्ट है ये।
भले ना आगे हम पूरा पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा, अभी तो उन्होंने अलग पद्धति से इसका व्याख्यान शुरू किया है, तो वहाँ अनुभाग से क्या समझना है तो कषाय का उदय स्थान, और काल से क्या समझना है तो कालोपयोग वर्गना, ये निकालो 62 पेज। देखो नीचे से दूसरा सूत्र जो बीच में लिखा है, कषाय के उपयोग संबंधी अध्या स्थानों की कालोपयोग वर्गना संज्ञा, यानी कितने काल तक विशिष्ट कषाय में उपयुक्त जीव है, जगन्य में हमने मान लिए थे 25 समय तक, और कोई जीव है तो 26-27 कोई मैक्सिमम है तो 100 समय तक, ये तो हमने माना था, तो 25 समय वाला एक, 26 समय वाले एक, 27 समय वाले एक, ऐसे उसको वर्गना कहा था और उसको कालोपयोग वर्गना नाम दिया था। तो यहाँ जब एक काल में कहते हैं तो वहाँ वो कालोपयोग वर्गना समझना था। अभी तो उन्होंने ये शब्दों के अर्थ यहाँ क्या लेना वो बताए, अभी उसका पूरे सूत्र का अर्थ तो बताने जाने वाले। यहाँ जो है ये संज्ञा है कौन सी, एक काले न, तो उस संज्ञा का अर्थ क्या करना है तो कालोपयोग वर्गना करना, यानी 156 पॉइंट में लिखते हैं अभी हम, 73 पेज पर है, अनंतर पूर्व गई कही गई यह संज्ञा ऐसा संनाम लिखा है ना, प्रवाह्यमान उपदेश के अनुसार जानना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य। तदो पुच्छा, इसके बाद पुच्छा करनी चाहिए। हमने क्या देखा था कि एक जीव के एक कषाय संबंधी, एक जीव के नहीं, एक कषाय संबंधी एक अनुभाग में एक काल में, फिर पुच्छा क्या बताई, कौन सी गति उपयुक्त होती, यानी हर एक शब्द के अर्थ अलग अलग किए। अप्रवाह्यमान उपदेश में
कषाय को अनुभाग,
एक अनुभाग में का अर्थ क्या किया,
वो एक कषाय में रहने का,
अनुभाग और कषाय एक करके बताया, और एक काल में नहीं किसी एक जीवन समय में, किसी एक समय में, ऐसा वहां अर्थ किया था। अब यहाँ प्रवाह्यमान उपदेश में इन संज्ञाओं का अर्थ अलग करना है। एक अनुभाग में का अर्थ होता है कषाय का उदय स्थान, और एक काल में का अर्थ होता है कालोपयोग वर्गणा, कितने समय उन तक उपयुक्त है उसको अलग अलग वर्गणा बताएं। उसके बाद पृच्छा करनी चाहिए, कौन सी पृच्छा की थी, कौन सी गति उपयुक्त हो।
ये तो बहुत सूक्ष्म कथन है ना, ये जो कवारूप जो है, क्योंकि एक समय में
उसके अर्थ अलग अलग किए, शब्दों के अर्थ अलग लिए, अभी कहाँ पुच्छा अभी पूर्ण नहीं हुई है हमारी, उसका सॉल्यूशन तो बाद में आएगा, अभी तो पुच्छा क्या है, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ लेके ये पुच्छा को समझना है, पुच्छा को समझेंगे तो उसका उत्तर समझेंगे। तो इसके बाद पुच्छा करनी चाहिए, इस संज्ञा विशेष का अवलंबन लेकर, ये बात ख्याल में है ना, संज्ञा विशेष का अर्थ है ये जो यहाँ नाम अनुभाग और काल बताया है, तो उसका विशिष्ट अर्थ समझ कर अनंतर गाथा सूत्र के अनुसार यह पुच्छा करनी चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। वह पुच्छा किस प्रकार की है इसी आशंका होने पर उत्तर का कथन करते हैं, काच गदी एकम में कसाय उदय ठाणे एकम निवा कषाय उयोग स्थाने भवे, एक कषाय उदय स्थान में अथवा एक कषाय उपयोगार्थ स्थान में कौन गति होती है? जैसे हमने एक ही कषाय में देखा क्रोध में ही सभी है, अब यहाँ कहते एक ही कषाय उदय स्थान होना चाहिए। उदय स्थान ने जो असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग उदय स्थान है, किसी विशिष्ट पर्टिकुलर उदय स्थान में सभी जीव है, या उपयोगार्थ स्थान यानी कितने समय तक उपयुक्त हो रहता है, हमने जैसे 25 समय वाला या मान लेते 70 समय तक सभी जीव उतने ही समय तक उपयुक्त है, ऐसा कहाँ बन सकता है, ये पूछा गया है। ये दूसरी पद्धति से पृच्छा का अर्थ किया उन्होंने, इसका उत्तर तो अभी नहीं आया है, ये तो प्रश्न क्या है उसको दूसरी पद्धति से यानी प्रवाह्यमान उपदेश के अनुसार बता रहे हैं। क्या कहा? एक कषाय उदय स्थान में अथवा एक कषाय उपयोगार्थ स्थान में कौन गति होती है? नरकादि गतियों में से कौन गति क्रोधादिक में से अन्यतर कषाय संबंधी एक ही कषाय उदय स्थान में अथवा एक ही कषायोपयोगार्थ स्थान में एक समय में उपयुक्त होती है? क्या इस प्रकार का संभव है अथवा नहीं है? यह इस पृच्छा का तात्पर्य। क्या ऐसा हो सकता है कि सभी जीव एक ही कषाय उदय स्थान में है या एक ही कषाय उपयोग अध्यास स्थान में है? अब विसरिसम वज्जुज्जदे काच, इस प्रकार इस अंतिम अंश का आश्रय कर विसदृश उपयोग विषयक दूसरे पृच्छा वाक्य को कहते हैं। यानी अनुभाग और एक काल का अर्थ अलग पद्धति से करके अभी पृच्छा का जो दूसरी लाइन है उसका भी अर्थ बता रहे हैं। यहाँ तो केवल प्रश्नों को ही समझा रहे हैं अलग अर्थ में, उसका उत्तर तो बाद में होगा। अथवा अनेगेषु कदाय उदय स्थानेषु अनेगेषु वा कषाय उपयोगद्ध स्थानेषु काचगति, विसदृश में क्या लेना? अनेक कषाय उदय स्थानों में और अनेक कषाय उपयोगद्ध स्थानों में कौन सी गति उपयुक्त होती है? अनेक कषाय उदय स्थानों में अथवा अनेक कषायोपयोगद्ध स्थानों में एक समय में उपयुक्त कौन गति होती है? इस प्रकार अधिकार के वश से यहाँ पर भी पृच्छा का संबंध कर लेना चाहिए। ऐसा पृच्छा, कहते यह पृच्छा है, अभी तक तो प्रश्न समझो कहते हैं, उत्तर तो बाद में आएगा क्योंकि उन्हीं शब्दों के अलग अर्थ बताए। पहले अप्रवाह्यमान उपदेश में अनुभाग का अर्थ कषाय के बस क्रोध मान मायलोभ इतना ही ले लिया, और एक काल में एक समय में की बात की। अब यहाँ अनुभाग का अर्थ क्या किया? कषाय के उदय स्थान कितने होते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण, हर एक कषाय के अपने अपने अलग अलग, और कषाय के जो उपयोगार्थ स्थान जो कहेंगे यानी कितने समयों तक उस कषाय में उपयुक्त होते हैं जीव, कोई जघन्य, जघन्य प्लस एक समय, जघन्य प्लस दो समय, जघन्य प्लस तीन समय, उत्कृष्ट तक के जो भेद है, तो ये उसके अलग अलग स्थान है। तो ऐसी कौन सी गति है? पहले तो बताया कि एक ही में उपयुक्त होती है, दूसरी प्रकार से पूछा है अथवा विसदृश रूप से यानी अनेक में, अनेक कषाय स्थानों में और अनेक उपयोगार्थ स्थानों में उपयुक्त है। ये तो पूछा हुई, यह पूछा है 160 नंबर को पढ़े। यह अनंतर पूर्व कही गई दो प्रकार की पूछाएं इस गाथा सूत्र से प्रतिबद्ध है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस प्रकार इस उपदेश में पृच्छा भेद को दिखलाता, ऐसा नहीं कि एक ही प्रश्न था उसके दो प्रकार से उत्तर दिए, ऐसा नहीं है, प्रश्न के ही दो अर्थ किए अलग अलग, तो पृच्छा भेद को दिखलाकर अब इस पृच्छा का निर्णय करने के लिए सूत्र को कहते हैं। अयम निर्देशो, यह निर्देश है, यह सूत्र सुगम है। यह निर्देश है नहीं, अभी उसका निर्देश है नहीं, कथन है। पहले तो यह पूछा है कहकर पूछा बताई, प्रश्न बताया, अब यह निर्देश है कह के उसका कथन कहेंगे, उसका उत्तर बताएंगे। तसा एक एक कमी कसा युदे ठाणे आवलियाए असंख्य जदि भागो। त्रस जीव एक एक कषाय उदय स्थान में आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण होते हैं। आवली के हुआ आवली के
आवली के
कषाय का उदय स्थान यानी एक समय में एक कषाय उदय स्थान में कितने जीव पाए जाएंगे उसकी बात देखो यहाँ पूरा पढ़ेंगे तभी उसका हमें भी ख्याल आ जाएगा क्या कहना चाहिए। यह निर्देश दो प्रकार का है। जो निर्देश बता रहे हैं तो कषाय उदय स्थान विषयक यानी कषाय के उदय स्थान के बारे में और कषायोपयोगाध्या स्थान विषय यानी कितने काल तक वो उसमें उपयुक्त है उसकी अपेक्षा। वहां सर्वप्रथम कषाय उदय स्थानों में त्रस जीवों का आश्रय कर प्रकृत विषय की प्ररूपणा करने के लिए यह सूत्र आया है। यथा यथा दिख रहा है कि यया दिख रहा है यथा त्रसकायिक जीव एक एक कषाय उदय स्थान में उत्कृष्ट रूप से आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण होते हैं। इस वचन से त्रसजीव नियम से अनेक उदय कषाय उदय स्थानों में रहते हैं इस बात का ज्ञान हो जाता है। क्या कहते हैं त्रसजीव कितने हैं असंख्यात त्रसजीव तो उसमें किसी पर्टिकुलर एक विशिष्ट कषाय उदय स्थान में कितने जो एट ए टाइम हो सकते हैं आवली के संख्या से बात तो नियम से बताएं तो वो कितने एक कषाय उदय स्थान में सभी जीव हो जाए ऐसा कभी नहीं बनेगा। तो कहते नियम से अनेक कषाय स्थानों में पाए जाएंगे तो कहते त्रस जीव नियम से अनेक कषाय उदय स्थानों में रहते हैं इस बात का ज्ञान हो जाता है क्योंकि आवली के असंख्यात भाग प्रमाण जीवों का यदि एक कषाय उदय स्थान प्राप्त होता है तो त्रस कितने हैं जगत प्रतर के असंख्यात भाग प्रमाण त्रस जीव राशि के कितने कषाय उदय स्थान प्राप्त होंगे। ये आवली का असंख्यात भाग कितना छोटा होगा और वहां तो जगत प्रतर का असंख्यात भाग इतने तो वहां पर त्रस जीव है। त्रस जीव कितने हैं जगत प्रतर डिवाइडेड बाय असंख्यात याद है कितने हैं जगत प्रतर के लिए दो आड़ी लाइन लिख देते हैं उसके नीचे क्या लिखते थे
आवली का असंख्यात
प्रतरांगुल डिवाइडेड बाय असंख्यात याद है यानी जगत प्रतर डिवाइडेड बाय चार डिवाइडेड बाय असंख्यात करते थे कहीं चार पांच भी लिखा था वो उसके संदृष्टि के लिए अभी बहुत दिन हुए ना संदृष्टि सीखी तो जगत प्रतर का असंख्यात अभाव। इस प्रकार त्रैराशिक करके देखने पर असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण यानी आवली के असंख्यात भाग में एक कषाय उदय स्थान तो जगत प्रतर के असंख्यात भाग में कितने कषाय उदय स्थान तो कितने हो के असंख्यात जगत श्रेणी असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण कषाय उदय स्थानों का आगमन देखा जाता है यानी पूरी त्रस राशि कितने अलग अलग कषाय उदय स्थानों में पाए जाएंगे तो असंख्यात जगत श्रेणी में कषाय उदय स्थान कितने टोटल असंख्यात लोक प्रमाण और यहाँ एट अ टाइम कितने अलग अलग पाए जाएंगे असंख्यात श्रेणी प्रमाण यद्यपि
नहीं जगत प्रतर
प्रतरंगुल का असंख्या स्वभाग एक
हाँ जगत प्रतर का असंख्या स्वभाग डिवाइडेड बाय अवनी का असंख्या का हाँ ऐसा ही लेना पड़ेगा ना
अवनी के असंख्यात विभाग के लिए एक उदय था
तो जगत
तो जगत प्रत के असंख्यात विभाग के लिए कितने होते
तो
वो जगत श्रेणी का असंख्यात स्वभाग आया असंख्यात जगत श्रेणी आया असंख्यात जगत श्रेणी आया मुझे वो पुरानी समृष्टि याद थी जगत प्रत डिवाइडेड बाय चार डिवाइडेड बाय असंख्यात था अभी तो बराबर है यहाँ
अवली
के असंख्या वहां तो कॉमनली असंख्यात कह दिया
हाँ। ये असंख्यात श्रेणी लेते हैं उसमें श्रेणी में एक एक प्रदेश लेना ना
जगत श्रेणी जब कहते हैं तो संख्या में एक एक प्रदेश
एक एक प्रदेश
सात राज्यों में एक एक प्रदेश की संख्या कितनी है उसको जगत श्रेणी हाँ। कहेंगे उसको असंख्यात गुणा करो
हाँ।
जगत श्रेणी को तो जगत श्रेणी से गुणा करेंगे तो जगत प्रतर हो जाता
हाँ।
है
तो
यहाँ यथायोग्य असंख्यात से वहाँ गुणा करो इतने तो एक समय में अलग अलग कषायों के उदय स्थान पाए जाएंगे एक समय में टोटल कषाय के उदय स्थान हर एक में एक एक जीव होगा ऐसा कभी नहीं बनेगा ना कल मैं क्या कहना चाहती हूँ कषायों के उदय स्थान कितने हैं असंख्यात लोगों में तो क्या ऐसा हो सकता है प्रत्येक में एक एक जीव है तो कोई इतनी त्रस्त है ही नहीं ना यहाँ त्रस्त की बात कर रहे हैं सावरों की बात नहीं जहाँ अनंत घटित हो गए यहाँ तो त्रसों की बात है यद्यपि यहाँ पर समस्त कषाय उदय स्थानों में त्रस जीवों का सदृश रूप से अवस्थान संभव नहीं है क्या कहा ये जरूरी नहीं है कि एक एक कषाय उदय स्थान में आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण जीव है हो सकता है किसी कषाय उदय स्थान में जीव एक ही जीव है किसी में दो ही है किसी में है ही नहीं है परंतु त्रैराशिक करने के लिए ये बात बताई तो कहते यद्यपि यहाँ पर समस्त कषाय उदय स्थानों में त्रस जीवों का सदृश रूप से अवस्थान संभव नहीं है तो भी समीकरण करके यह त्रैराशिक विधान जानना चाहिए जो हमने त्रैराशिक लिखा है इतने में इतने तो टोटल कितने कषाय उदय स्थान हो गए यतः इस प्रकार इतने मात्र कषाय उदय स्थानों में एक काल में त्रस जीव राशि रहती है इसलिए प्रथम पृच्छा यहाँ संभव नहीं है क्या पृच्छा कहती कौन सी गति है कि जो एक ही कषाय उदय स्थान में पाई जाएगी कोई भी गति नहीं है क्योंकि एक ही कषाय उदय स्थान हो ऐसी कोई भी गति नहीं है इसलिए उसका अपसरण कर यानी उसको छोड़कर अब दूसरी कौन सी बात विसरिसम उवजुज्जदे काच इस प्रकार इस दूसरी पृच्छा की ही यहाँ संभावना दिखलाई तो क्या विसदृश कषाय स्थान हो गए तो हाँ बिल्कुल होगी एक ही कषाय स्थान में तो कभी कोई गति उपयुक्त नहीं होगी इसी प्रकार नरकादि गतियों में से प्रत्येक गति को विवक्षित कर प्रकृत प्ररूपणा पूरी जाननी चाहिए क्योंकि एक एक कषाय उदय स्थान में आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण जीव होते हैं इस प्रकार इस कथन की अपेक्षा कोई भेद नहीं हाँ उनका प्रमाण अलग होगा परंतु आवली का असंख्यात भाग ये बात ये कथन तो सब में लागू होगा आवली के असंख्यात भाग भी असंख्यात प्रकार के हो गए तो उसमें ही ना दिखता जरूर है फिर भी जो कथन है वो सर्वत्र समान होगा इस प्रकार इस कथन की अपेक्षा कोई भेद नहीं है इस प्रकार कषाय उदय स्थानों में प्रकृत विषय का निर्देश करके अब कषायोग हो गया कषायोपयोग कषायोप चाहिए अब कषायोपयोगाध्यास्थानों में कषाय उपयोग अध्यास्थानों में प्रकृत अर्थ का कथन करने के लिए कहते हैं ये बात ख्याल में आई पहले अनुभाग का अर्थ क्या कहा कषाय उदय स्थान ऐसी कौन सी गति है कि एक ही कषाय उदय स्थान में वो है तो कहते ऐसे कोई भी नहीं है
इसमें भी ये प्ररूपणा
इसकी प्ररूपणा भी चल रही है
प्रवाहमान की तरह।
अभी हमारी दूसरे प्रकार से प्रवाहमान की बात चल रही है, अभी वो पहली बात यहाँ नहीं लाना है, क्योंकि यहाँ हम कषाय उदय स्थान कह रहे हैं, यहाँ अनुभाव को कषाय कहकर बात नहीं हो रही है।
ये बहुत सूक्ष्म है ना?
अरे कोई सूक्ष्म नहीं, अच्छा है। आप वो पहले वाली को याद मत करो, यहाँ पर जो विषय चल रहा है ना, आप वो पहले पहले सोचते रहते हैं ना, इसीलिए आपको ये कठिन लग रहा है। अभी इसका करो अर्थ कि क्या है कि इसी एक ही कषाय उदय स्थान में सभी जीव हो, ऐसा संभव है? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी पर्टिकुलर कषाय उदय स्थान में एट अ टाइम अधिक से अधिक कितने जीव होंगे, तो कितने होते हैं, तो नियम से आवरी की संख्या के बाद नियम बताए ना, तो उसका अर्थ क्या, नियम से अनेक कषाय उदय स्थान हो गए हो गए, किसी भी गति की बात करो, नरक की करो, देव की करो, मनुष्य की करो, या तीरंज की करो, तो ये तो हो गया। अभी कषाय उपयोग अध्यास स्थानों की बात करेंगे, ऊपर सूत्र पहले पढ़ाएंगे। कषाय उपयोग स्थानेषु पुनः उपकस्येन असंख्य जाओ सेरियो, किंतु कषायोपयोग काल स्थानों में, अध्या के बदले काल बताया, अभी अर्थ एक ही है। कषायोपयोग काल स्थानों में उत्कृष्ट रूप से असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण होते हैं। कितने जीव उसमें होते हैं? एक एक कषायोपयोग स्थान में असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण, क्योंकि ये कितने होते हैं, ये स्थान कितने हैं?
नहीं,
कषाय उपयोग काल स्थान कितने हैं अरविंदर? कषाय उपयोग काल के स्थान कितने हैं?
अंतर्मूर्त
है, क्योंकि उत्कृष्ट काल में से जगन्य काल माइनस करो और एक मिला दो, तो कितने भेद है?
अंतर्मूर्त
प्रमाण भेद है, कोई जगन्य है, कोई एक जगन्य प्लस एक समय, जगन्य प्लस दो समय, जगन्य प्लस तीन समय, जगन्य प्लस चार समय, कहाँ तक? उत्कृष्ट तक। कितने स्थान हुए? अंतर्मूर्त प्रमाण जो संख्या है उतने स्थान हुए, और कषाय के उदय स्थान कितने? असंख्यात लोक प्रमाण। कषाय के उदय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण थे, तो उसमें किसी एक विषय उदय स्थान में आवली के असंख्यात प्रमाण जीव रहते थे। अब यहाँ कितने मात्र अंतर्मूर्त के जितने समय है उतने यहाँ स्थानों के भेद है, स्थान है, स्थानों के भेद नहीं स्थान है। जगन्य काल उसमें एक समय अधिक काल, उसमें दो समय अधिक काल, उसमें तीन समय अधिक काल, इस तरह से उत्कृष्ट काल तक के भेद कितने हैं, स्थान कितने हैं? अंतर्मूर्त प्रमाण स्थान है, तो एक एक स्थान में अनेक जीव हो गए ना, तो कितने होते? तो असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण होते। हाँ, ऊपर क्या देखा था? असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण कषाय उदय स्थान प्राप्त होते, यानी सभी जीवों के कषाय उदय स्थान अलग अलग कितने हो गए? तो असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण। अब यहाँ कषाय उपयोग काल स्थानों में उत्कृष्ट रूप से असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, वहाँ कितने थे? आवली के असंख्यात बाघ प्रमाण थे। यहाँ एक उदय स्थान में आवली के असंख्यात बाघ प्रमाण, और ऐसे टोटल उदय स्थान सभी जीवों को कितने हो गए अलग अलग? तो असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण। कभी न कभी कितने होते हैं ऐसा पूछेंगे तो असंख्यात लोक प्रमाण, परंतु किसी एक गिवन समय में, किसी एक समय में कितने हो सकते वेरिएशन? तो असंख्यात श्रेणी प्रमाण। अब यहाँ क्या बता रहे हैं? हाँ, एक किसी विशिष्ट काल में उपयुक्त तो हुए जीव, जो उसका काल का जो स्थान बताया है उसमें एट अ टाइम कितने जीव हो गए उस गति के, तो कहते हैं असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण। डिफरेंस ख्याल में आया ना? यहाँ पर वहाँ एक कषाय के उदय स्थान में आवली के असंख्यात भाग प्रमाण जीव थे, अभी यहाँ एक काल स्थान में कषायोपयोग काल स्थान है विशिष्ट, मान लेते हम 25 समय वाला हमने जो संदृष्टि बनाई थी उसमें एट अ टाइम कितने जीव हो सकते, तो असंख्यात श्रेणी प्रमाण हो सकते, अलग अलग जीव उतने ही काल के लिए उसमें उपयुक्त है, ये बात हो सकती, क्योंकि उसके भेद कम है, वहाँ भेद बहुत ज्यादा। तो इसका अर्थ देखते हैं,
ये कषाय उपयोग काल, ये जो अध्यास्थान जो बताए ना, वहाँ पे हमने जगन्य अंतर्मुर्त से उत्कृष्ट काल हमने संख्यात गुणा लिखा था,
फिर भी अंतर्मूर्त है कि नहीं,
अंतर्मूर्त
है बराबर, 25 से 100 संख्यात गुणा ने 4 गुणा हो गया।
एक एक काल में जो हम लोग पकड़ते हैं वो जगन्य में से पहले समय से दूसरे समय से ऐसे लेने का कि डिफरेंस जो है उसमें लेना।
भेद कितने हुए
अंतर्मूर्त में?
अभी हम 25 और 100 लिया था हमने,
बराबर है,
कितने भेद हुए?
76
भेद, क्योंकि उत्कृष्ट में से जगन्य माइनस करो एक मिला दो, वहाँ 76 भेद हुए थे।
नहीं, पर जगन्य अंतर्मूर्त था वो जो 25 का हमने लिया था, वहाँ पे भी 25 समय लेना है कि नहीं लेना है समय?
बिल्कुल, वो एक स्थान हुआ, 25 स्थान नहीं हुए वहाँ पर, स्थान एक गिनेंगे, 25 समय वाला एक स्थान, 26 समय वाला एक स्थान, 27 समय वाला एक स्थान, 28 समय वाला एक स्थान, ऐसे कितने स्थान हो गए? 76 स्थान हो गए। अभी उसमें 25 क्या गिनना है, उसको एक पहला स्थान गिनेंगे। ऐसे स्थानों की संख्या कितने हैं अंतर्मूर्त में? जितने समय उतनी है, क्योंकि उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त है, जगन्य भी अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट में से जगन्य माइनस करो तो भी अंतर्मूर्त रहता है, तो उतने स्थानों की संख्या हुई। तो यहाँ कहते हैं एक एक कषाय उपयोगाधा स्थान में त्रसजीव, यहाँ त्रसजीवों की बात चल रही है आपकी, उत्कृष्ट रूप से असंख्यात वे भाग मात्र होते हैं, किसके मगर? नहीं, त्रस्त जीव राशि से
जगत पत्र के असंख्यात वे भाग के असंख्यात वे भाग,
हाँ, यानी उनकी त्रस्त राशि के असंख्यात वे भाग प्रमाण होते हैं, है ना, क्योंकि असंख्यात डिवाइड किया ना हमने, असंख्यात अंतर्मूर्त के असंख्यात समय उसमें उतने भेद हो जाएंगे, तो उत्कृष्ट रूप से असंख्यात वे भाग मात्र होते। ऊपर क्या लिखा है? एक एक कमी कसाय उयोग ठाणे तसजीवा उक्कसेन असंख्य यदि भाग मेंता अच्छन्ति उत्तम होदी। यानी जो जगत प्रतर के असंख्यात वे भाग प्रमाण जीव है उसका असंख्यात भाग किया तो असंख्यात जगत से नहीं हो गई, यह उक्त कथन का तात्पर्य। क्योंकि अंतर्मूर्त प्रमाण, ये बात आई ना, अंतर्मूर्त प्रमाण कषा उपयोगाधा स्थानों में, इसका अर्थ ख्याल में आता है मंजू बेन? कषा उपयोगाधा स्थान का अर्थ क्या है? जो हमने 25 और 100 तक जगन्य काल 25 समय तक कोई जीव उपयुक्त रहता है, कोई 100 समय तक रहता है, अनइंडिविजुअली सभी विकल्प पॉसिबल है, तो उसमें एक एक समय से बढ़ते हुए ऐसे स्थान कितने हैं अंतर्मूर्त? अंतर्मूर्त हमने काल का माप बनाया है, यानी संख्या बतानी हमको, जैसे वहां असंख्यात लोग की हमने संख्या बताई, वहां प्रदेश जितने हैं उतने जीवों की संख्या बतानी थी, यहाँ जितने अंतर्मूर्त के समय हैं
उतने जीवों की संख्या
हमने 76 मानी है, उतने ही कालों के स्थान है, कषाय के नहीं, कालों
के,
कषायोपयोग अध्यास्थान, अंतर्मूर्त में जितने समय है उतने वहाँ काल की अपेक्षा स्थान है। काल में आती है बात, कोई 25 समय वाला स्थान है, कोई 26 वाला है, कोई 27 वाला है, कोई 28 वाला है, तो हमने उसको 76 गिने थे, ये 76 को ही यहाँ अंतर्मूर्त कहा है। तो यहाँ कहते हैं अंतर्मूर्त प्रमाण कषाय उपयोगाधा स्थानों में समस्त त्रस जीव राशि यथा प्रविभाग के अनुसार रहती है। प्रविभाग ने विशेष रूप से विभाग किया, यह विधि करके यथा प्रविभाग, यानी क्या है, त्रस जीव राशि को हम उससे डिवाइड करेंगे अंतर्मूर्त के समयों से, यह विधि करके त्रैराशिक क्रम से देखने पर एक एक कषाय उपयोगाधा स्थान में, यानी कितने समय तक उपयुक्त रहते हैं कोई जीव जगन्य काल तक, कोई अधिक काल तक, तो कहते हैं एक एक कषाय उपयोगाधा स्थान में असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण जीव उपलब्ध होते हैं। तो क्या सभी समयों में समान रूप से जी पाएंगे तो नहीं, ये त्रैराशिक समझाने के लिए किया। यद्यपि उक्त सभी कषाय उपयोगार्थ स्थानों में समान प्रविभाग से तस जीव का अवस्थान संभव नहीं है, यानी समान रूप से हरे इतने समय वाले, इतने जीव इतने समय वाले, ऐसा कोई वहाँ डेफिनेट कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए समान प्रविभाग नहीं है तो भी समीकरण विधान के अनुसार समीकरण किया, यानी सबको समान कर दिया, हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितने हो गए एक एक स्थान में, तो असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण। जैसे हमने मान लेते कि 76,000 जीव लिए और ये 76 समयों में बांटने हैं, तो एक एक समय में कितने कितने जीव आए, 76,000 को 76 में बांटा, कितने हुए 1,000 आए। तो क्या 25 समय वाले 1,000 है, 26 समय वाले 1,000 है, 27 समय वाले 1,000 है, ऐसा है नहीं, कहीं 500 हो गए, कहीं 1,500 हो गए, कहीं 2,000 हो गए, कम ज़्यादा हो गए, हमने समीकरण कर दिया, सबको इक्वली कर दिया, एवरेज निकाला सबका, एवरेज है ना ये समीकरण विधान के अनुसार। यानी एवरेज निकालेंगे तो कितना होगा, एक एक स्थान में
समान जीव हो जाएंगे,
हाँ कितना समान, तो जगत असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण। यहाँ पर भी नरकादि गतियों में से प्रत्येक गति को विवक्षित कर आगमानुसार प्रकृत प्ररूपणा जानना चाहिए। इसलिए यहाँ पर भी वही तात्पर्य है कि अनेक कषाय उपयोगाधा स्थानों में गा रह गया उपयोगा स्थानों में नियम से सब गतियां प्रयुक्त है, यानी सभी गतियां, एक एक गति की बात करेंगे तो प्रत्येक गति में कषाय के उपयोगाधासन कितने, तो अनेक, एक ही विशिष्ट समय में सभी पूरे उस गति के सभी जीव उतने ही काल में, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी जो हमने ये देखी ना जगत प्रतर का असंख्या स्वभाव, उसको हम अंतर मुहूर्त के समयों से डिवाइड करेंगे, क्योंकि उतने कषाय के उपयोग अधस्थान है, यानी उसको हमने एवरेज निकाल के उसको उतना बता दिया कि सब में समान है, ऐसा मान कर की बात है, तो उसका उत्तर कितना होगा, असंख्या जगत से। अब इसी भावार्थ का स्पष्टीकरण करने के लिए आगे का सूत्र कहते, चलो अच्छा इसमें और स्पष्टीकरण हो जाएगा अपना। एवं भणिदम होवी सर्वगदियो नियमा अनेगेशु कषाय उदय ठाणेशु अनेगेशु च कषाय उपयोग ठाणेशु स्थित। इस प्रकार पूर्वोक्त कथन का यह तात्पर्य है कि सभी गतियां अनेक कषाय उदय स्थानों में और अनेक कषाय उपयोग काल स्थानों में नियम से है, नियम बताया
कि मनुष्य गति पर्याप्त, मनुष्य गति में भी यही लागू पड़ेगा,
सभी चारों गतियों में बता दिया ना,
क्योंकि पर्याप्त मनुष्य तो संख्यात है,
तो क्या हुआ
और अवली का संख्यात के बाद समान जीव एक कषाय स्थान में रह सकते हैं।
अभी यहाँ मनुष्य में कैसे होगा, वो सामान्य मनुष्य में लगा लो,
सामान्य मनुष्य में नहीं, मैं पर्याप्त की बात,
संख्यात हो गए, कितने हो गए संख्यात, मनुष्यों को डिवाइड करो तो संख्यात हो गए, तो
एक कसाई में मैक्सिमम,
तो सारे एक में हो गए क्या,
नहीं इसे मेरा फिर से
संख्यात हो गए, संख्यात हो गए,
अच्छा
और उनके स्थान कितने हो गए, तो संख्यात हो गए। वहाँ क्या लिखा था, आवली के असंख्यात विभाग के लिए एक कसाई उदय स्थान, तो इतने सारों में कितने हो गए, तो वहाँ भी संख्यात उदय स्थान होगी, संख्या जीव उनके संख्यात होगी, अल्प संख्या होगी। देखो अनेक कषाय उदय स्थान है कि नहीं, इतनी बात देखो, वहाँ उसका प्रमाण मत निकालो, क्योंकि यहाँ तो हम अलग अलग गतियों में देखा है, गतियों के अवांतर भेदों में यहाँ की बात नहीं चल रही है, जहाँ संख्यात जीव ही है उसमें संख्यात करेंगे हम, इसकी कोई विशेषता नहीं, अनेक में आ गए वो, अनेक लिखा है तो उसमें संख्या, ऐसा नहीं होगा कि सभी जो है संख्या भले हो सभी एक ही कषाय उदय स्थान में, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि हम देखते कि सभी एक समान कषाय रूप से है, तो आप कहेंगे बोर हो जाएगी संख्या। सभी गतियां लिख रही थी यहाँ पर, अनेक कषाय उदय स्थानों में और अनेक कषाय उपयोग काल स्थानों में नियम से, ये नियम बताए, सभी गतियां भी बताए और नियम बताए। देखो हम जो विचार करते हैं ना तो उसके अनुसार करने की प्रैक्टिस करना, हम तो ये कैसे पॉसिबल है उसमें ये नहीं हो सकता कि ऐसा विचार करते, वो नहीं है, ये तो नियम बताया। तो अभी हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि इसके अनुकूल हम विचार करें कि ऐसा बताया है तो एक में भले संख्या तो फिर भी वो असंख्य अनेक है कि नहीं है, एक नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त न्याय से उस प्रकार से वो उ और स अलग अलग हुआ है, उस प्रकार से न्याय से के बाद गैप चाहिए और उसमें एक एक चाहिए, न्याय से एकत्र रखना और उस एकत्र रखना, पूर्वोक्त न्याय से उस प्रकार से सिद्धि निर्बाध पाई जाती है, ये तो पहले ही बता दिया तो ये तो सिद्ध होता है। इस प्रकार इसका कथन करके अब प्रकृत विषय में जीव अल्पा बहुत्व का, अल्प बहुत्व ना, अल्पा बहुत्व, जीव अल्प बहुत्व का कथन करने के लिए आगे का प्रबंध कहते हैं। इस प्रकार उक्त कथन करके नौ पदों द्वारा अल्प बहुत्व करना चाहिए, ऊपर रह गया हाँ। एवं भणिदम होई सौवगदियो नियमा अनेगेशु कसाय उदय ठानेशु अनेगेशु च कसाय उयोगदत ठानेशु, ये तो पढ़ा था मैंने। उसके बाद वाली तदो एवं परुवणम कादुन, यानी ऐसी प्ररूपणा करके नवहि पदहि अपबहुवम, नौ पदों द्वारा अल्प बहुत्व करना चाहिए। देखो इस प्रकार कषाय उदय स्थानों में और उपयोगाधार स्थानों में जीवों के अवस्थान क्रम का कथन करके, यानी कितने जीव रहते हैं उसका कथन करके, तदनंतर प्रकृत विषय में इस समय त्रस जीवों का अल्प बहुत्व करते, त्रस जीवों की ही बात थ्रूआउट चल रही है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। वह कैसे किया जाता है इसे पूछा होने पर नौ पदों के द्वारा करना चाहिए यह निर्देश है। शंकाकार पूछता है वे नौ पद कौन है, हमें भी प्रश्न पूरा था, ये नौ पद कौन से होने चाहिए, अभी बताएंगे पढ़ेंगे। हाँ हाँ, समाधान, मानादि कषायों में से एक एक कषाय के जघन्य उत्कृष्ट और अजघन्य अनुत्कृष्ट, ये ध हुआ है अजघन्य अनुत्कृष्ट, एक शब्द बनाए अजगन्यानुत्कृष्ट, इस प्रकार से भेद रूप कषाय उदय स्थानों से संबंध रखने वाले तीन पदों के तथा उसी प्रकार तीन रूप से विभक्त हुए कषाय उपयोगाधार स्थानों के संयोग से उत्पन्न हुए नौ पद होते, क्या कहना चाहते हैं? कषाय के उदय स्थान तीन, जगन्य उत्कृष्ट और मध्यम, मध्यम के लिए क्या शब्द लिया? अजगन्य अनुत्कृष्ट, दोनों को मिला था अजगन्य अनुत्कृष्ट, अपनी भाषा में जगन्य मध्यम और उत्कृष्ट तीन थे, किसके? कषाय के उदय स्थानों के, और कषाय के उपयोगाधार स्थान के जगन्य मध्यम उत्कृष्ट तीन। उसकी बात नहीं, एक एक कषाय के नौ नौ पद है, मानादि कषायों में से एक एक कषाय के कषाय उदय स्थान तीन जगन्य मध्यम उत्कृष्ट और उपयोगाधार स्थान तीन जगन्य मध्यम उत्कृष्ट, अभी उसको गुणा करो, तीन त्रिक नौ, जैसे हम कह रहे हैं मनोवचन काय कृतकारिता अनुमोदना कितने हुए, नौ हो गए, उसके कॉम्बिनेशन करो ना एक दूसरे से गुणा करो यथा। अब वो यथा करके बताएंगे क्रोधादि के उत्कृष्ट कषाय उदय स्थान में और कषाय उपयोग काल स्थान में प्रतिबद्ध एक पद है, दोनों के उत्कृष्ट लिए, उदय स्थान उत्कृष्ट और उपयोग काल स्थान उपयुक्त उत्कृष्ट, उन्हीं के उत्कृष्ट कषाय उदय स्थान में जघन्य कषाय उपयोग काल स्थान में प्रतिबद्ध दूसरा पद है। ये दूसरी पॉसिबिलिटी, यानी कषाय उदय स्थान को उत्कृष्ट रखा और उसके साथ काल में पहले में पहले उत्कृष्ट काल लिया, दूसरे पद में जघन्य काल लिया, अब तीसरा जो पद है उत्कृष्ट कषाय उदय स्थान में और अजघन्यान उत्कृष्ट कषाय उपयोग काल स्थानों में प्रतिबद्ध तीसरा पद है। ये बात ख्याल में आई, उदय स्थान को उत्कृष्ट रखा, उसमें काल को जघन्य मध्यम उत्कृष्ट तीन भेद किए, अभी इसके हर एक तीन के साथ उसके हर एक तीन लगाते जाओ, अभी उत्कृष्ट के ऊपर तीन लगाए, अब जघन्य पर तीन लगाओ, फिर अजघन्यान उत्कृष्ट पर तीन लगाओ। देखो ये चौथा देखेंगे, अभी जघन्य कषाय उदय स्थान में ये चौथा पद और उत्कृष्ट कषाय उपयोग काल स्थान में प्रतिबद्ध चौथा पद है, जघन्य कषाय उदय स्थान में और जघन्य कषाय उपयोग काल स्थान में प्रतिबद्ध पांचवा पद है, जघन्य कषाय उदय स्थान में और अजघन्य अनुत्कृष्ट कषाय उपयोग काल स्थानों में प्रतिबद्ध छठा पद। ये बात ख्याल में आ रही है ना। अब इसको मध्य मैंने अजघन्य अनुत्कृष्ट रखना, अजघन्य अनुत्कृष्ट कषाय उदय स्थानों में और उत्कृष्ट कषाय उपयोग काल स्थान में प्रतिबद्ध सातवां पद है, अजघन्य अनुत्कृष्ट कषाय उदय स्थानों में और जघन्य कषाय उपयोग काल स्थान में प्रतिबद्ध आठवां स्थान है, अजघन्य अनुत्कृष्ट कषाय उदय स्थानों में और अजघन्य अनुत्कृष्ट कषाय उपयोग काल स्थानों में प्रतिबद्ध नौवां स्थान है। ये बात ख्याल में आई, एक एक में लगाना क्रोधादि के, यानी क्रोध पर नौ, मान पर नौ, माया पर नौ, लोक पर नौ, हर एक में नौ नौ लगेंगे। इस प्रकार इन नौ पदों के द्वारा आगे त्रस जीवों का अल्पभूतव अधिकृत है, वो पहले बताया था ना कि उक्त कथन करके नौ पदों के द्वारा अल्पभूतव करना चाहिए, यह इस सूत्र के अर्थ का आशय है। तम जहां वह कैसे, यह पृच्छा वाक्य सुगम है, इस प्रकार पृच्छा के विषयभूत हुए अल्प बहुत्व का मानादि कषायों के क्रम से यह निर्देश है। अभी उसके अभी ये जो नौ पद देखे, इन नौ पदों में कहां जीव विशेष अधिक है कहां कम है ये बात बताना। दोनों को उत्कृष्ट रखेंगे तो जीव कम है, कि दोनों को जघन्य रखेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन रखेंगे तो उसमें जीव कितने हैं, तो वहां नौ नंबर लगाएंगे अलग अलग, और उसमें भी क्रोधमान माया लोक की बात करेंगे। तो यहाँ है उपकस्य कषाय उदय ठाने उपकस्याय मानव जोगट धाये जीवा थोड़ा थोवा, उत्कृष्ट कषाय उदय स्थानों में और उत्कृष्ट मानोपयोग काल में जीव सबसे थोड़े हैं। मान को पहले लिया, थोड़े में मान को पहले, अल्प में लिया, मान का काल अल्प है। 78 पृष्ठ पर उत्कृष्ट अनुभाग के उदय से उत्पन्न हुए कषाय उदय स्थान ने अनुभाग का उदय ही तथा असंख्यात लोक प्रमाण अध्यवसान स्थानों में से अंतिम अध्यवसान स्थान रूप कषाय परिणाम की उत्कृष्ट कषाय उदय स्थान संज्ञा है। इसको कषाय देवताय स्थान भी कहते हैं। कषाय उदय स्थान वो मान का ही ले लेना है, परंतु अभी मानोपयोग अध्याय, अभी इस काल की बात है, यहाँ पर मान में उत्कृष्ट काल की बात है, तो उत्कृष्ट हुआ उत्कृष्ट करना उसका। तीसरी लाइन 167 के नीचे कुरु चाहिए, उत्कृष्ट हुआ उत्कृष्ट मानोपयोगात धामे, ऐसा कहने पर मान कषाय की उत्कृष्ट कालोपयोग वर्गणा का ग्रहण करना चाहिए, यानी मान कषाय में उत्कृष्ट काल तक रहने वाला, इसलिए मान कषाय से संबंध रखने वाले और परस्पर संयुक्त हुए इन दोनों उत्कृष्ट पदरूप से परिणत हुए रस जीव सबसे थोड़े हैं, ऐसा सूत्र के अर्थ का संबंध करना चाहिए, यानी मान कषाय में उपयुक्त है और वो
उत्कृष्ट
अनुभव का उदय, यानी कषाय उदय स्थान भी उत्कृष्ट है
और काल
भी उत्कृष्ट है। शंका, इसका स्तोकपना किस प्रमाण से जाना जाता है? समझा नहीं, क्योंकि दोनों ही पदों के उत्कृष्ट भाव से परिणत हुए जीव बहुत विरल होते हैं, ऐसा परमागम का उपदेश है। शंका, इनका प्रमाण क्या है? इसका समाधान, इनका प्रमाण आवली के असंख्यातवे भाग मात्र। यद्यपि मान कषाय के उत्कृष्ट उपयोग काल में असंख्यात जगश्रेणी प्रमाण त्रस जीवों का अवस्थान संभव है, हमने देखा था एक एक के उपयोग काल में उपयोगाधा के स्थानों में असंख्यात जगश्रेणी प्रमाण जीव होते हैं, परंतु यहाँ एक कंडीशन और डाली है, जो उत्कृष्ट कषाय उदय स्थान भी होना चाहिए, तो वो तो उसमें लिमिटेशन है। तो भी उत्कृष्ट कषाय उदय स्थान से युक्त उसमें आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण ही जीवराशि होती है, क्योंकि यहाँ अन्य प्रकार संभव नहीं। अकेले उतने उत्कृष्ट उपयोगाधा में कितने होते कहेंगे तो असंख्य जगत से हैं, उन कंडीशन क्या लगाई, उत्कृष्ट उदय स्थान भी होना चाहिए, तो आवली का असंख्य स्वभाव होता। विशेषार्थ, यहाँ उदय स्थान का अर्थ कषाय परिणाम और उपयोगाधा का अर्थ कषाय परिणाम का काल। ये दोनों जिन जीवों के उत्कृष्ट होते हैं उनकी संख्या आवली के असंख्यात भाग प्रमाण से अधिक नहीं पाई जाती, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। आगे भी इसी प्रकार तात्पर्य घटित कर लेना चाहिए। जहन्याय मानव जोगत धाय जीवा असंख्य जगुणा, उनसे जघन्य मान कषाय संबंधी उपयोग काल में स्थित हुए जीव असंख्यात गुणे हैं। अब ये उत्कृष्ट ही रखना, किसको? उदय स्थान को। उदय स्थान उत्कृष्ट रहते हुए जघन्य काल तक रहने वाले जीव कितने हैं, ये पूछा गया। इस सूत्र में उत्कृष्ट कषाय उदय स्थान में, ये देखो लिखा है यहाँ पर, अधिकारवश इस पद का संबंध कर लेना चाहिए, क्योंकि उत्कृष्ट कषाय उदय स्थान में हमने तीन लगाए, एक उत्कृष्ट काल, एक जघन्य काल और एक अजघन्य अनुत्कृष्ट काल, तो ये दूसरे पद की बात है यहाँ पर। तो उत्कृष्ट उदय स्थान के साथ मान कषाय संबंधी जघन्य उपयोग काल लिया, उसमें जीव कितने, तो असंख्यात गुणे, यानी कम काल तक उसमें रहे। उत्कृष्ट उदय के साथ अधिक काल तक रहना कम जीवों में होगा, कम समय तक रहना अधिक पॉसिबल है असंख्यात। इससे उत्कृष्ट कषाय उदय स्थान में और मान कषाय के जघन्य उपयोग काल में मान कषाय रूप से परिणत हुए जीव पूर्वोक्त जीवों से असंख्यात गुने होते हैं। इस प्रकार सूत्र का अर्थ अर्य हुआ, फलित हो जाता है। यह राशि भी आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण ही है। पहले हमने देखा था किसी एक उदय स्थान में आवली के असंख्यातवे भाग ही जी होगी, उसमें भी टाइम की कंडीशन और लगा ली, किंतु उत्कृष्ट मानवोपयोग काल में परिणमन करते हुए जीवों से जघन्य मनोपयोग हुआ। मानवोपयोग काल में परिणमन करने वाले जीव बहुत होते हैं, क्योंकि जघन्य काल प्रचुर रूप से पाया जाता है। थोड़े काल तक परिणमना विशिष्ट उदय में तो अधिक संभावना है, इसलिए ये जीव असंख्यात गुणे हैं, यह सिद्ध हुआ। शंका, गुणकार क्या है? तो गुणकार आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण है। वहां भी आवली के असंख्यात प्रमाण जीव है, उसको आवली के असंख्यात विभाग गुणा करो तो भी आवली के असंख्यात विभाग ही कहेंगे। यहाँ पर भी रुकेंगे अभी हम। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। अश्विन
नमोरियंताणं नमस्कृताणं नमार्याणं नमोवचनं नमोलोयकप्रस्तावणं नमोरियंताणं नमस्कृताणं नमार्याणं नमोवचनं नमोलोयकप्रस्तावणं नमोरियंताणं नमस्कृताणं नमार्याणं नमोवचनं नमोलोयकप्रस्तावणं नमोरियंताणं नमस्कृताणं नमार्याणं नमोवचनं नमोलोयकप्रस्तावणं।